3 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री के प्रतिनिधिमंडल से 2 घंटे पहले राष्ट्रपति अयूब का प्रतिनिधिमंडल ताशकंद पहुंचा। सोवियत संघ ने भारत और पाकिस्तान को बराबर का दर्जा देने के लिए खासी मेहनत की थी और दोनों टीमों के नेताओं को लगभग एक जैसे आलिशान ढांचा में ठहराया गया था। खुद प्रधानमंत्री कोसिगिन पिछले कई दिनों से ताशकंद में मौजूद थे और व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाले हुए थे। कोसिगिन को पहला झटका तब लगा जब 3 जनवरी को ही अयूब ने उन्हें सूचित किया कि अगले दिन जब वो शास्त्री से मिलेंगे तो उनसे हाथ नहीं मिलाएंगे। अयूब को इस बात का डर था कि उनकी शास्त्री से हाथ मिलाती तस्वीर जब पाकिस्तानी अखबारों में छपेगी तो इसका उन पर बुरा असर पड़ेगा। फ्रॉम कश टू ताशकंद के लेखक फारूक बाजवा ने BBC को बताया।
अयूब की इस बात पर कोसिगिन बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा कि एक सरकार के प्रमुख के तौर पर शास्त्री सम्मान के हकदार हैं और अयूब को इससे उन्हें महरूम नहीं करना चाहिए। कोसिगिन का रुख देखकर अयूब ने अपना विचार बदल दिया था।
जब 4 जनवरी को अयूब और शास्त्री पहली बार मिले तो उस मौके पर कोसिगिन, अयूब और शास्त्री ने भाषण दिए। शास्त्री के भाषण पर काफी तालियां बजी। सिर्फ एक शख्स ने ताली नहीं बजाई, वो थे पाकिस्तान के विदेश मंत्री जुल्फकार अली भुट्टो। CP श्रीवास्तव शास्त्री पर लिखी अपनी किताब में लिखते हैं,
भुट्टो से ताली बजवाने के लिए अयूब को उन्हें बाकायदा कोहनी मारनी पड़ी। ताशकंद समझौते से दूरी बनाने की भुट्टो की ये पहली सार्वजनिक कोशिश थी। 5 जनवरी को अचानक पता चला कि ये भुट्टो का जन्मदिन है। पाकिस्तान के सूचना सचिव अल्ताफ गौहर ने उसी समय उनके लिए एक छोटी जन्मदिन पार्टी आयोजित की, लेकिन वहां मौजूद लोग साफ देख पा रहे थे कि उस दिन भुट्टो का ध्यान ताशकंद के अलावा कहीं और था।
उस समय भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य थे शंकर वाजपेयी, जो बाद में पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त बने।
भुट्टो और अजीज, खासतौर से अजीज अहमद, वो तो बड़े कट्टर थे इन बातों में। दोनों ने बड़ी टफ लाइन ली थी। बल्कि पहले तो अयूब और शास्त्री जी मिले थे 2-3 घंटे के लिए अकेले। फिर उन्होंने फैसला किया था कि दोनों डेलीगेशन मिलकर बात करें। तो सरदार चरण सिंह हमारे लीडर थे और भुट्टो साहब वहाँ के थे, तो हम लोग पूरा आफ्टरनून उसी पर लगे। उस वक्त उन्होंने जाहिर कर दिया कि कुछ नहीं मानने को तैयार है सिवाय कश्मीर सेटलमेंट। ना हम कश्मीर सेटलमेंट करने को तैयार थे, ना उनके बाकी डिमांड्स मानने को तैयार थे, तो इसलिए टॉक्स ब्रेक डाउन किए थे। उसके बाद हमारे डेलीगेशन में ख्याल था कि शायद 2 लीडर्स फिर से मिले। पाकिस्तान की तरफ से जवाब आया कि अब क्या फायदा मिलने से। तब कोसिगिन साहब ने अपनी डिप्लोमेसी शुरू की।
सबसे पहले बात शुरू हुई जीती हुई जमीन वापस करने के बारे में। शास्त्री ने कोसिगिन से कहा,
हम आत्मरक्षा के तौर पर हाजीपीर पर कब्जा करने के लिए बाध्य हुए थे ताकि पाकिस्तान की तरफ से होने वाली घुसपैठ को रोका जा सके। अगर हम वहां से हट जाएं तो इस बात की क्या गारंटी है कि पाकिस्तान फिर से उस इलाके से हमारे इलाके में घुसपैठ शुरू नहीं कर देगा। मैं समझता हूं कि हाजीपीर खाली करने के बारे में आप हमारी मुश्किलों को समझेंगे, दूसरी जगहों को खाली करने के बारे में बात की जा सकती है।
कोसिगिन ने भी अपना पूरा होमवर्क किया हुआ था। उन्होंने शास्त्री को जवाब देते हुए कहा,
हम हाजीपीर के बारे में आपकी चिंता को समझते हैं, लेकिन अगर आप वहां से नहीं हटे तो पाकिस्तान छंब और दूसरे भारतीय इलाकों से नहीं हटेगा और आप लाहौर और सियालकोट सेक्टर से नहीं हटेंगे। इस हालत में कोई समझौता नहीं हो पाएगा और आपको खाली हाथ अपने देश लौटना पड़ेगा। सवाल यह है कि क्या हाजीपीर आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है कि संभावित युद्ध की कीमत पर भी आप इस पर बने रहना चाहेंगे?
अगले दिन शास्त्री ने इस मुद्दे पर रक्षा मंत्री यशवंत राव चव्हाण से बात की। उन्होंने भी कहा कि हाजीपीर के मुद्दे पर शांति की संभावना को खतरे में नहीं डाला जा सकता। कुलदीप नैयर याद करते हैं,
कोसिगिन ने इसमें इनिशिएटिव लिया तो शास्त्री जी पर बहुत प्रेशर था, क्योंकि शास्त्री जी चलने से पहले सब जो कहते थे आप जो मर्जी कीजिए, हाजी पीर और तितवाल नहीं देना इनको वापस, शास्त्री जी के दिमाग में तो था। तो उन्होंने कोसिगिन से बात की, क्योंकि रशिया ही हमारे साथ था, सोवियत यूनियन जो वीटो इस्तेमाल करता था। उसने कहा, देखिए ये फ्रूट्स ऑफ एग्रेशन है, ये वर्ड्स थे उसके, तो अब ये एग्रेशन में जो लिया वो आपको वापस करना पड़ेगा। तो शास्त्री जी ने कहा कि देखिए वो कितना लड़ाई का रहता है सब कुछ, तो ये फिर करेंगे। वो कहता है देखिए यूएन चार्टर है, दूसरा है, वो तो कुछ कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपकी हम मदद नहीं कर सकते। अगर आप यही स्टिक किया तो फिर हमें वीटो जो है आपके खिलाफ करनी पड़ेगी। तो अब शास्त्री जी उसके बाद उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया।
7 जनवरी को अयूब और शास्त्री के बीच 2 छोटी-छोटी बैठकें हुई, लेकिन उनका कोई परिणाम नहीं निकला। अयूब का जोर कश्मीर पर था, जबकि शास्त्री उस पर शिखर बैठक के दौरान औपचारिक रूप से कोई चर्चा ही नहीं करना चाहते थे। सीपी श्रीवास्तव अपनी किताब लाल बहादुर शास्त्री ए लाइफ ऑफ ट्रूथ इन पॉलिटिक्स में लिखते हैं,
अचानक अयूब ने शास्त्री से उर्दू में कहा, कश्मीर के मामले में कुछ ऐसा कर दीजिए कि मैं भी अपने मुल्क में मुंह दिखाने के काबिल रहूं। शास्त्री ने बहुत विनम्रता लेकिन मजबूती से कहा, सदर साहब मैं बहुत माफी चाहता हूं कि मैं इस मामले में आपकी कोई खिदमत नहीं कर सकता।
आखिरकार कोसिगिन की मध्यस्थता रंग लाई और अयूब और शास्त्री अंतिम सत्र की बातचीत के लिए राजी हो गए। पाकिस्तान की तरफ से आए समझौते के मसौदे में लिखा गया था,
दोनों देशों के बीच सभी मुद्दे शांतिपूर्ण तरीके से संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत हल किए जाएंगे। शास्त्री ने जोर दिया कि इस टाइप्ड मसौदे में अयूब अपने हाथ से जोड़े बिना हथियारों का सहारा लिए हुए। अयूब ने ऐसा ही किया। बाद में जब भुट्टो ने अपने भाषणों में ताशकंद समझौते की गुप्त शर्तों का जिक्र किया तो संभवतः उनका आशय इसी हस्तलिखित नोट से रहा होगा जिसे अयूब ने शास्त्री के जोर देने पर अपने हाथों से लिखा था।
9 जनवरी की आधी रात को सोवियत विदेश मंत्री क्रोमिको के पास एक संदेश आया कि भुट्टो उनसे टेलीफोन पर बात करना चाहते हैं। सीपी श्रीवास्तव लिखते हैं,
क्रोमिको फोन पर आए। दूसरे छोर पर भुट्टो कह रहे थे कि मसौदे से हथियार न इस्तेमाल करने की शर्त हटा दी जाए। ये सुनते ही आम तौर से संयत रहने वाले क्रोमिको का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने कहा कि इस पर अभी थोड़ी देर पहले ही अयूब और आपने सहमति दी है, अब इससे पीछे हटने के लिए बहुत देर हो चुकी है और ऐसा करना बहुत बहुत बुरा होगा। आप फौरन इस बात को अपने राष्ट्रपति तक पहुंचा दीजिए। क्रोमिको का कड़ा रुख देखकर भुट्टो ने अपनी बात पर जोर नहीं दिया।
लेकिन भुट्टो ने इस समझौते को राजनीतिक तौर पर बहुत भुनाया और इसकी शुरुआत उन्होंने ताशकंद से ही कर दी। समझौते पर दस्तखत होने के बाद वो वाहिद शख्स थे जिन्होंने ताली नहीं बजाई। यहां तक कि जब अयूब भाषण दे रहे थे भुट्टो बार बार अपना सिर हिला रहे थे, मानो कह रहे हों कि इस समझौते से उनका कोई लेना देना नहीं है। उधर इस समझौते की भारत से भी कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आई।
मुझे याद है कि उसी शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो इंडियन कॉरेस्पॉन्डेंट थे उनको बात कही, वो इतना शास्त्री जी के खिलाफ बोल रहे थे, या कहा ये क्या किया आपने, देश को भेज दिया, वो किया। तो आई हैड टू इंटरवीन, मुझे याद है मैंने कहा भाई यू आर एड्रेसिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सवाल जो आप पूछ सकते हो ह्यूमिलेट थोड़ा कर सकते हो। लेकिन वो जब आए वापस घर पे, मतलब ढांचे में, तो उन्होंने कहा अरे भाई वेंकट रामन उनका सेक्रेटरी होता था, वेंकट रामन देना दिल्ली को, दिल्ली में टेलीफोन बनाया गया। तो कहता अम्मा जी से, अम्मा जी कहाँ करते, अम्मा जी से, तो उनकी लड़की आई बड़ी, वो कहती अम्मा जी बात नहीं करेंगे, आपने हाजी पीर और तेथवाल ले दिया। तो कहने लगे अरे भाई ये घर वाले जब इतना क्रिटिसाइज करते हैं तो बाहर वाले तो क्या करेंगे। कृष्णा मैनन का एक स्टेटमेंट आया था जरूर, वो कहता है ठीक है इनका तो कहना ही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो दिल पे उनके लगी, दिस वॉज वन ऑफ द रीजन्स दैट ही गॉट द हार्ट अटैक।
कुछ ही घंटों के अंदर शास्त्री को अचानक दिल का दौरा पड़ा और उनका देहावसान हो गया। जब शास्त्री के ताबूत को भारत ले जाने के लिए गन कैरेज से उतार कर विमान पर चढ़ाया जा रहा था तो उनको कंधा देने वालों में सोवियत प्रधानमंत्री कोसिगिन के साथ साथ पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान भी थे। लेकिन इस लड़ाई के बाद न तो भारत को कुछ मिला और न ही पाकिस्तान को। इतना खून बहने के बाद भी कश्मीर के नक्शे में 1 मिलीमीटर का भी परिवर्तन नहीं हुआ, तो क्या ये एक निरर्थक लड़ाई थी? सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के श्रीनाथ राघवन कहते हैं,
हर वॉर जो है एक लेवल पे फ्यूटाइल होता ही है। इस वॉर की फ्यूटिलिटी इस बात में थी कि पाकिस्तान ने जो कैलकुलेशंस बनाए कश्मीर मसले को फोर्स के हिसाब से सुलझने के लिए, वो हमेशा ही गलत थे, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो पावर की डिस्पैरिटी थी वो साफ होनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस और मिसजजमेंट की वजह से ये वॉर शुरू किया और इंडिया का जो हैंडलिंग था, खासकर डिप्लोमेटिक टेबल पे, खासकर शास्त्री जी ने ताशकंद में किया, वो मेरे नज़रिए से उसने भारत के डिप्लोमेटिक पोजीशन को और स्ट्रेंथन किया और कश्मीर के मसले में हमारा जो अपर हैंड आज तक बना रहा है उसको बरकरार रखा।
ये याद रखा जाना चाहिए कि इस जंग की असल कीमत न तो राजनेताओं ने चुकाई और न ही आला सैनिक अफसरों ने। इसका असर झेला दोनों तरफ के आम सैनिकों और आम नागरिकों ने। प्रूसिया के एक सैनिक विचारक कार्ल वॉन क्लॉसविट्स ने अपने सम्राट से एक बार कहा था कि जंग का उद्देश्य जीत नहीं, शांति होता है। 1965 की जंग न तो पाकिस्तान के लिए जीत लेकर आई और न ही भारत के लिए शांति। साहिर लुधियानवी की कुछ पंक्तियां जहन में आती हैं।
फजल, बीबीसी दिल्ली।